ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि वो पश्चिम एशिया की स्थिति का निरंतर आकलन कर रही है और इस क्षेत्र के देशों में भारतीयों की सुरक्षा, उनकी सकुशल वापसी तथा देश के ऊर्जा हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की मांग पर विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच अपने वक्तव्य में पश्चिम एशिया की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि सरकार अमरीका और इसराइल की ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बाद से स्थिति का निरंतर आकलन कर रही है और सभी संबंधित पक्षों के निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण इस मामले में मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर आधारित है। पहला, सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से हो, क्षेत्र में तनाव कम करने के कदम उठाए जाएं, आम लोगों पर हमले न किए जाएं। दूसरा, क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और सकुशल वापसी सरकार की प्राथमिकता है। और तीसरा, देश के राष्ट्रीय ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और खाड़ी के कई देशों में हालात चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मुद्दे पर हालात की गंभीरता को देखते हुए 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS की मीटिंग हुई। इसमें ईरान में हुए हवाई हमलों और उसके बाद खाड़ी देशों में हुए हमलों के बारे में जानकारी दी गई। CCS ने इस इलाके में भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। समिति को इस इलाके में आने जाने वाले भारतीय यात्रियों और इन देशों में तय परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को होने वाली मुश्किलों के बारे में बताया गया। इसने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इन समस्याओं से निपटने के लिए सही कदम उठाने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है और भारत का मानना है कि किसी भी विवाद का समाधान संवाद और कूटनीतिक प्रयासों से ही निकाला जाना चाहिए। सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया है जो क्षेत्र में मौजूद भारतीयों से संपर्क बनाए रखने और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता का समर्थक है और तनाव कम करने के लिए सभी पक्षों के बीच बातचीत को जरूरी मानता है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा मानना है कि सभी मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत सरकार वहां की स्थिति का लगातार आकलन कर रही है। भारत शांति के पक्ष में है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत शांति, संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान का समर्थक है तथा मौजूदा परिस्थितियों में तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वकालत करता है। डॉ जयशंकर ने बताया कि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रह रहे हैं। हम भारतीयों से लगातार संपर्क में हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और मदद के लिए पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर आम जीवन और व्यापार पर भी पड़ा है। इसके साथ ही सप्लाई चेन पर भी दबाव देखा जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर भी सतर्क है और हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को दूतावास के जरिए मदद दी गई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल किया गया। डॉ जयशंकर ने कहा कि कल तक लगभग 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत की है और राजनयिक माध्यमों से लगातार संवाद भी जारी है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व में संपर्क करना स्वाभाविक रूप से कठिन है। हालांकि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। सरकार जून 2025 में 12 दिन के युद्ध के बाद से लगातार पश्चिम एशिया की स्थिति का अंदाजा लगा रही है। हमने बढ़ते तनाव के संकेतों पर ध्यान दिया और ईरान में भारतीय समुदाय को उसी हिसाब से सावधान किया। 5 जनवरी 2026 को विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी। जो लोग पहले से ही वहां रह रहे थे उनसे दूतावास में पंजीकरण करने, पूरी सावधानी बरतने और दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर नजर रखने का आग्रह किया था। 14 जनवरी 2026 को एक दूसरी एडवाइजरी जारी की गई जिसमें यात्रा से बचने की सलाह को और भी कड़े शब्दों में दोहराया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई ने भी 14 जनवरी 2026 को भारतीय नाविकों के लिए अपनी एडवाइजरी जारी की, जिसमें उनसे दूतावास की एडवाइजरी मानने और किनारे पर बेवजह आने जाने से बचने को कहा गया। रिक्रूटमेंट और शिपिंग कंपनियों से भी कहा गया कि वे भारतीय नाविकों को ईरान में न भेजें और न ही उन्हें तैनात करें। विदेश मंत्री के वक्तव्य के दौरान विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे, जिससे पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने उन्हें अपने अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। श्री जगदम्बिका पाल ने कहा कि विदेश मंत्री का वक्तव्य आ रहा है, आप लोग अपने अपने स्थान पर चले जाएं, शायद आप जो मांग कर रहे हैं उसका उत्तर मिल जाए। विपक्ष के भारी हंगामे और शोर शराबे के पीछे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपना वक्तव्य देना शुरू किया। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया संकट पर विस्तृत वक्तव्य दिया है, विदेश मंत्री ने सारी बातों का जवाब दिया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष भ्रमित है, उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस देते हैं, फिर दोबारा नोटिस देते हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं तो दूसरा नोटिस देने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इस तरीके का व्यवहार सदन में कभी नहीं देखा गया। विपक्ष संसद की गरिमा को गिरा रहा है, वो जो अनावश्यक प्रस्ताव लाए हैं सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। पीठासीन अधिकारी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आपके प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल किया गया है, उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि आपके नोटिस को स्वीकार कर लिया गया है, फिर भी आप उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने सदस्यों से बार बार शांत रहने का आग्रह किया और कहा, क्या आप अपने प्रस्ताव पर नहीं बोलना चाहते? हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले एक बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भारत की T20 क्रिकेट विश्व कप में जीत के लिए सदन को सूचना दी। सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इससे पहले बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा में दिवंगत सदस्य और दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन एन के प्रेमचंद्रन ने दिवंगत सदस्य डॉ रिकी एंड्रयू जे सिंकोन और दिवंगत पूर्व सदस्य कुमारी सुशीला त्रिया, श्री देवी बक्स सिंह, श्री पूर्णमासी राम और श्री केपी उन्नीकृष्णन के निधन की जानकारी सदन को दी। इसके बाद दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदस्यों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। दो बार स्थगन के बाद 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सभी को चर्चा में बोलने का मौका दिया जाएगा, सदन नियमों से चलता है। उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद जावेद को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता हूं, लेकिन वो ये प्रस्ताव क्यों नहीं पेश कर रहे। उन्होंने कहा कि सरकार सदन चलाना चाहती है, लेकिन आप सदन के बीचों बीच आकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी के बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा नहीं थमा, तब सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर अपनी ओर से राज्यसभा में एक बयान दिया। इस बयान पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध किया। सदन में आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने बयान में कहा कि भारत तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति की ओर लौटने का समर्थक है और क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर सैन्य हमले करने और तेहरान के अमरीकी ठिकानों तथा इसराइल पर जवाबी हमलों के बाद भारत सरकार के लिए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे राष्ट्रीय हित सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है, संवाद और कूटनीति की ओर लौटने की अपील करता है। हम तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि संवाद और कूटनीति ही संकट को हल करने का एकमात्र ठोस रास्ता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों और खाड़ी देश में रहने वाले बड़े भारतीय समुदायों की सुरक्षा की समीक्षा की गई। डॉक्टर जयशंकर जब ये बयान दे रहे थे, तब सदन में विपक्षी सदस्य पश्चिम एशिया में संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से पहले संक्षिप्त चर्चा कराने की मांग की। विदेश मंत्री का बयान खत्म होने से पहले विपक्षी सदस्य चर्चा की मांग पूरी न होने पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। विपक्षी सदस्यों के इस कदम का विरोध करते हुए सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है। श्री नड्डा ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के देश के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे विभिन्न मुद्दों पर बहस और चर्चा की मांग करते हैं, लेकिन बहस या चर्चा का जब मंत्री जवाब देते हैं तो विपक्षी दल उसका बहिष्कार करते हैं। इससे पहले बैठक शुरू होने पर दिवंगत पूर्व सदस्यों मुकुल रॉय, डॉ जनार्दन वाघमारे और एचके दुआ को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप जीतने पर सदन में बधाई भी दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अत्यंत खुशी की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर प्रतिष्ठित ICC मेंस T20 विश्व कप जीता। इसके बाद सदन में शून्यकाल हुआ, जिसमें सदस्यों ने आसन की अनुमति से लेकर महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी की डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी ने सड़क हादसों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए मांग की कि नियमों का कड़ाई से पालन, आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, जागरूकता कार्यक्रम आदि पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। भाजपा के ही गोविंद भाई लालजी भाई धुलकिया ने दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई। भाजपा के डॉ अजीत माधवराव गोपछड़े ने नकली नोट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऐसे नोट मिलने पर अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो सबसे पहले उससे ही कड़ी पूछताछ की जाती है। इसी पार्टी की रेखा शर्मा ने राजस्थान के अजमेर से हरियाणा के भिवाड़ी के बीच चलने वाली ट्रेन का मुद्दा उठाया और कहा कि ये ट्रेन विशेष श्रेणी के तहत चलती है, जिसकी वजह से यात्री इसे लेकर अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के अशोक राव, शंकर राव चौहान, डॉ सुमेर सिंह सोलंकी, संगीता यादव, माया नारोलिया तथा मनोनीत डॉ मीनाक्षी जैन ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। सदन में भोजनावकाश के बाद बैठक फिर शुरू होने पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सदन में कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद थे। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि देश में पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ राजनीतिक प्रदूषण की भी शुद्धि आवश्यक है। श्री तिवाड़ी ने कहा कि संप्रभग शासनकाल के दौरान 2012-13 में पर्यावरण मंत्रालय के लिए 2430 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मोदी सरकार ने 2026-27 के बजट में मंत्रालय के लिए 3759 करोड़ रुपए से अधिक दिए। उन्होंने बाघ संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामों की चर्चा करते हुए कहा कि 2010 में बाघों की संख्या 1706 थी, जो 2022 में दोगुनी से बढ़कर 3682 हो गई। उन्होंने कहा कि आज विश्व के 75% बाघ भारत में हैं। चर्चा में भाग लेते हुए रामभाई मुकरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को अपना व्यक्तिगत अभियान बना लिया है। भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जनजातीय समाज ने वृक्ष और वनों की जितनी रक्षा की है उतनी कोई नहीं कर सकता। भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने कहा कि भारत में कई समाजों में लोग नदी को अपनी माता मानते हैं, किंतु आज देश की विभिन्न नदियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो तो उन देशों में भी नहीं होता जहां नदी को नहीं माना जाता। बीजू जनता दल के शुभाशीष खुंटिया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाना आज देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती बन गया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।